मेरे प्रिय नौजवान साथियों नमस्कार। आज 9 अगस्त 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के मुख्य विषय के रूप में हम लोग चर्चा करेंगे एक उस आर्टिकल पर जो मैंने कल प्रेस क्लिपिंग्स के तहत आपको प्रोवाइड किया था और मैंने आपसे कहा भी था कि आर्टिकल बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसे जरूर पढ़िएगा। मुझे नहीं मालूम कि आप सबने उसे पढ़ा है या नहीं हुआ है, लेकिन आज मैं उसी पर बात करूंगा जो खासकर भारत में अभी तक जो नीतियां बनती रही आजादी के बाद से लेकर अब तक उस पर आधारित था, यानी कि यूं कह लीजिए कि नीति निर्माण पर विदेशी प्रभाव, यानी कि हमारी जो नीतियां अभी तक रही हैं वो किस तरीके से विदेशियों द्वारा नियंत्रित होती रही हैं या उनसे प्रभावित होती रही हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम लोग उस टॉपिक पर आएं, हमेशा की तरह आइए कुछ न्यूज हैं उन पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, एक न्यूज जो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन सामान्य रूप में ही है, एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमें वही जानना चाहिए जिनके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना हो। दूसरी बातें हमें ध्यान में रखनी ही नहीं चाहिए, हम सब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो अपने पढ़े लिखे की सार्थकता भी हमें सिद्ध करनी है, चाहे हम सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हों या न कर रहे हों। तो इस लिहाज से जो एक खबर है वो आपको मालूम है कि जो न्यायमूर्ति दीपक मिश्र हैं वो हमारे देश के अब अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। जब हम भारत के मुख्य न्यायाधीश कहते हैं तो ये आपको कहीं पढ़ने को अखबारों में मिल जाएगा, पॉलिटिकल साइंस की कॉन्स्टिट्यूशन की किताबों में भी मिल जाएगा। याद करिए रखिए कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कहने का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं है, जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं है। भारत का मुख्य न्यायाधीश का मतलब है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यह भारत के मुख्य न्यायाधीश। और अगर यह कहा जाए कि भारत के न्यायाधीश, तब भी याद रखिएगा वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही होंगे, भारत के न्यायाधीश यानी कि मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये न्यूज आपने सुनी दोस्तों। इसके बारे में बात करने के लिए कुछ खास नहीं है, चूंकि वो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं तो उनकी नियुक्ति की गई है। नियुक्ति की जो अनुमति है वो सरकार ही देती है, हालांकि नाम सुप्रीम कोर्ट भेजती है, तो इसमें इस नियुक्ति में सरकार का कोई बहुत बड़ा हाथ नहीं होता। लेकिन ये जरूर है कि सरकार जब तक अगर अनुमति नहीं देती है तो सर्वोच्च न्यायालय अपनी तरफ से ही नियुक्ति नहीं कर सकता है, है ना, सरकार की उसमें अनुमति जरूरी है। मित्रों, जो दूसरी खबर थी वो भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर है। आपने टीवी चैनल्स पर भी देखा होगा, न्यूज में भी सुना है कि आज 9 अगस्त है और 75वीं वर्षगांठ आज है और संसद में अलग तरीके से इसे मनाने का विधान भी किया गया है, क्योंकि जो 75 वर्ष होते हैं वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। भारत सरकार ने इसे संकल्प से सिद्धि तक का नाम दिया है। इस पर हम लोगों ने कुछ दिनों पहले बात की थी, जिसका इशारा हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात की संबोधन में भी किया था कि 1942 में यह आंदोलन छिड़ा और 1947 में हमें आजादी मिल गई। 9 अगस्त 1942 और इसके बाद फिर 15 अगस्त 1947, मतलब डेट के हिसाब से कुछ ही दिनों का फर्क है, अदरवाइज 5 साल बिल्कुल एग्जैक्ट बैठते हैं लगभग। तो प्रधानमंत्री ने इसे संकल्प से सिद्धि का नाम दिया है और इसे बहुत खूबसूरत तरीके से जोड़ा भी है उन्होंने इतिहास से कि 9 अगस्त 1942 को हिंदुस्तान ने कह दिया कि भैया भारत छोड़ो, अब तुम भारत में नहीं रह सकते, यानी कि भारत हम छुड़वाएंगे तुमसे, यह संकल्प लिया गया, राइट। और इसके बाद 5 साल के बाद वह सिद्धि में परिवर्तित हो गई, यानी कि संकल्प पूरा हुआ, सिद्ध हो गया, राइट। तो उन्होंने नारा दिया है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें छोड़ने के लिए कहनी है और अपने देश को आगे ले जाना है। उसमें ये वही है, जाति भारत छोड़ो, संप्रदाय भारत छोड़ो, आतंकवाद भारत छोड़ो, इस तरह के नाम उन्होंने नारा दिया है। आज के अखबारों में आप देखेंगे कि जो बड़े अखबार हैं, अच्छे अखबार हैं, दूसरे अखबार में भी होगा, चूंकि मैंने देखा नहीं है तो मैं कुछ कह नहीं सकता, सरकार ने बहुत बड़ा, केंद्र सरकार ने एक एड भी दिया है, विज्ञापन भी दिया है और उसमें बकायदे वो पॉइंट्स दिए हुए हैं कि किन किन बुराइयों को भारत छोड़ना है। मैं चाहूंगा कि आप सब उन्हें नोट कर लें और ये मान करके चलें कि ये सिविल सर्विस के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये लक्ष्य रखा गया है कि 5 साल में हम इन संकल्पों को पूरा कर लेंगे। दूसरी बात मित्रों, चूंकि 75वीं वर्षगांठ है भारत छोड़ो आंदोलन की, तो आप मान करके चलें कि स्वतंत्रता आंदोलन का यह एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके इस साल पूछे जाने पर की ज्यादा संभावना है, जिस पर इस साल प्रश्न पूछे जा सकते हैं प्री में भी और मेंस में भी, और हो सकता है नहीं भी पूछे जाए, क्योंकि सिविल सर्विस में मैंने ये देखा है कि जिनकी बहुत ज्यादा चर्चा हो जाती है तो उसे फिर किनारे भी कर दिया जाता है। लेकिन हम इसी आधार पर कोई लिबर्टी नहीं ले सकते। आपको भारत छोड़ो आंदोलन की अपेक्षाकृत एक अच्छी तैयारी करनी चाहिए, और एक अच्छा आर्टिकल आज के दैनिक भास्कर में छपा भी है, वह मैं आप लोगों को प्रोवाइड भी कर रहा हूं। दोस्तों एक बात और, कल मैं NDTV में रवीश कुमार जी का प्रोग्राम देख रहा था, 9 बजे आता है ना जो डिस्कशन को लेकर के, कभी कभी बहुत अच्छे विषय आते हैं सिविल सर्विस की दृष्टि से। अक्सर यह होता है कि 9 बजे जैसे ही दूरदर्शन की न्यूज खत्म होती है तो मैं NDTV एक बार ऑन कर लेता हूं कि देखते हैं कि आज किस विषय पर डिस्कशन आ रहा है। तो कभी कभी बहुत मौजू विषय होते हैं, मौजू विषय यानी कि सिविल सर्विस एग्जाम की दृष्टि से, अदरवाइज तो बहुत महत्वपूर्ण विषय उसमें उठाए जाते हैं और नए विषय होते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि उनका जिस तरह से विश्लेषण किया जाता है वो थोड़े से बौद्धिक किस्म के होते हैं। ऐसा नहीं होता कि उसमें कहीं 4-5 लोगों को बिठा लिया फिर वो आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उससे तो क्या है कि चीज गड़बड़ हो जाती है। लेकिन इसमें आपके रवीश के प्रोग्राम में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो कल जो विषय उठाया गया था वो खासकर अल्पसंख्यक संस्थानों को लेकर था, है ना। अल्पसंख्यक जैसे जामिया मिलिया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटीज हैं, है ना। अल्पसंख्यक हमारे संविधान ने अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन पर बहुत ही खूबसूरत डिस्कशन था। डिस्कशन क्या था, एक फैजान मुस्तफा साहब हैं जो शायद बेंगलोर लॉ कॉलेज के हेड भी हैं, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, पद नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। आप लोगों को ध्यान होगा कि उनका मैंने 1-2 आर्टिकल भी आप लोगों को पढ़ने को उपलब्ध कराया, और मैंने स्पेशली कहा था कि ये बहुत अच्छा लिखते हैं, और अगर आप ये डिबेट सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये कितनी जानकारी रखते हैं, और ये नहीं कि केवल किताबी जानकारी रखते हैं, बहुत ही विश्लेषणात्मक जानकारी रखते हैं। मित्रों चूंकि ये माइनॉरिटी से संबंधित है तो इसमें आपको दोनों चीजें मिलेंगी सुनने को जानने को। पहला तो कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, क्यों इस तरह की व्यवस्था की गई है, प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, क्या किया जाना चाहिए। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप इस प्रोग्राम को जरूर सुने, और यदि आप टीवी पर नहीं सुन सकते हैं तो जो NDTV का जो ब्लॉग है उस पर रवीश कुमार जी का यही 9 बजे का जो प्रोग्राम होता है ब्लॉग के फॉर्मेट में भी आता है, तो आप NDTV के ब्लॉग में भी जाकर उसे पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम मुझे लगा, तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे आपको इसकी सूचना देनी चाहिए। मित्रों अब मैं आता हूं मुख्य विषय पर। कल का आर्टिकल आप लोगों ने पढ़ा होगा और मैंने आप लोगों से गुजारिश की थी कि आप इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें। मित्रों बहुत पहले मैंने आप सबसे एक वायदा मांगा था, संकल्प ही कह लीजिए कि कराया था, कि क्या आप सच में मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं सिविल सर्विस की। मुझे मालूम है कि उस समय जोश में आकर के तो बहुत से लोग हां कर देते हैं, क्योंकि ना कहने से क्या फायदा होगा और हां कहने में नुकसान क्या होगा, लेकिन निभाव बहुत कम लोग पाते हैं, ये बहुत लंबा अनुभव मुझे इसका रहा है। और मित्रों जीवन में सफल वही होते हैं जो निभा ले जाते हैं, बस इतनी बड़ी भीड़ होती है, निभाने वाले बहुत थोड़े होते हैं, बीच बीच में लोग छूटते चले जाते हैं। कुछ लोग कुछ दिनों तक निभाते हैं, कुछ लोग उससे थोड़ा ज्यादा निभा लेते हैं, और कुछ लोग आखिरी तक निभाते चले जाते हैं, और जो आखिरी तक निभाते हैं उनका बेड़ा पार भी हो जाता है। तो मुझे नहीं मालूम मित्रों आप लोगों में से कितने लोगों ने पढ़ा होगा, ये जरूर मुझे मालूम है कि जिन लोगों ने पढ़ा होगा डेफिनेटली आज मेरे इस विश्लेषण को वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। मुझे विश्लेषण नहीं करना चाहिए बल्कि ये कहना चाहिए कि मैं जो बात उन्हें बताने जा रहा हूं कि कैसे आर्टिकल को समझा जाता है, कैसे उसे पढ़ा जाता है, इस तथ्य को आप ज्यादा अच्छे तरीके से पकड़ सकेंगे। तो आइए मित्रों मैं आपको टॉपिक पर बात नहीं कर रहा उस तरीके से कि मैं समझाऊं। इसमें कुछ शब्द आए हैं, मैं उनकी तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, तब उस हम कहते हैं कि आर्टिकल को सही तरीके से पढ़ा गया, आर्टिकल को सही तरीके से समझा गया और इस आर्टिकल को आधार बनाकर सिविल सर्विस की सही तरीके से तैयारी की गई। सिर्फ पढ़ने से बात नहीं बनती है। देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है कि जब हम भारत के नीति के बारे में बात करते हैं, आजादी के बाद से जो हमारी नीतियां बनी, नीतियां सभी क्षेत्रों की नीतियां, नो डाउट कि इसमें राजीव कुमार जी ने जो लिखा है वो आर्थिक नीतियों पर उनका पूरा जोर है। आर्थिक नीतियों पर इसलिए क्योंकि वो खुद अर्थशास्त्री हैं, आर्थिक क्षेत्र के जानकार हैं और आपको मालूम होगा कि आपको ही अब नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है, राजीव कुमार जी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो वो उस विषय के विशेषज्ञ हैं। तो उन्होंने बट नेचुरल है कि केंद्र में आर्थिक नीतियों को ही रखा है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्थिक नीतियों तक ही सीमित है। आजादी के बाद भारत ने जो नीति निर्माण की प्रक्रिया अपनाई, नो डाउट उस पर विदेशी विशेषज्ञों का बहुत जबरदस्त प्रभाव रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। और उसके पीछे बैकग्राउंड रही, बैकग्राउंड ये रही फ्रेंड्स कि 100 साल तक ऑलमोस्ट अंग्रेजों ने शासन किया। उसने जो हम मॉडर्न सिस्टम देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, आईपीसी का, एजुकेशन का, जुडिशरी का, आपको मालूम है पुलिस का, ये सिस्टम अंग्रेजों ने एस्टेब्लिश किया। दूसरा यह हुआ कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में जितने हमारे लीडर्स थे, ज्यादातर लीडर्स आप देखिए उनकी पृष्ठभूमि आपको लॉ की मिलेगी, वकालत की मिलेगी, और ये सब वो थे जो ब्रिटेन जाते थे, वहां वकालत की शिक्षा लेते थे और वहां के माहौल को देखते थे और उससे बहुत प्रभावित होते थे, और नो डाउट प्रभावित होते थे तो कोई गलत प्रभाव नहीं था, वो बहुत सही प्रभाव भी था, क्योंकि वहां की जीवन की जो उदारता थी, जो मानवता थी, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे, जो स्वतंत्रता थी, वो अद्भुत थी, तो उसका प्रभाव पड़ा। हमारा जब देश आजाद हुआ तो ये महसूस किया गया कि चूंकि विदेशों में इतनी स्वतंत्रता है और वो इतने विकसित हो चुके हैं जिन्होंने हम पर शासन भी किया है, तो डेफिनेटली बहुत से मामलों में वो हमसे बेहतर होंगे। तो इसी बात का इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ा कि सारी नीतियां हम लोगों ने वहीं से ली। आप देखेंगे कि यहां तक कि जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान बनाने की जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, उसमें भी ज्यादातर मेंबर्स फॉरेन के ही थे, विशेषज्ञ भी ज्यादा से ज्यादा फॉरेन के लिए जाते हैं। आप देखिए किसी भी मामले पर होगा तो फॉरेन के विशेषज्ञ होते हैं। अब जो फॉरेन का जो कल्चर है, जो रूट्स है और जो रिक्वायरमेंट्स है, उनका अपना इतिहास अलग है, उनकी अपनी चेतना अलग है ना, उनकी सामाजिक संरचना बिल्कुल अलग है, और यहां तक कि वो जिस डेवलपमेंट के जिस स्टेज पर है वो उनकी रिक्वायरमेंट भी अलग है। अब मुश्किल ये है कि ये सब अपने देश को तो बहुत अच्छे से जानते हैं, अपने अपने देशों को तो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन जहां के लिए वो नीतियां बना रहे हैं उसको बहुत अच्छे से नहीं जानते। अब भारत का विभाजन ही आप देखिए कि कितने अव्यवहारिक स्तर पर किया गया है, क्योंकि विभाजन करने की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो ब्रिटेन में रहा था, वो भारत में इससे पहले कभी आया ही नहीं था, वो केवल एक वकील था, आकर के उसने एक टेबल पर नक्शा रखा और लाइन खींच दी, भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया, तो वो अनुभव नहीं होते हैं। आप देखिए कि हमारे यहां जितनी भी आप नीतियां लेंगे, आप देखिए कि प्रशासन ले लीजिए तो कहा अंग्रेजों के पैटर्न पर है, हमारे बहुत से कानून वगैरह आईपीसी वगैरह जो बने हुए अभी तक वैसे ही चल रहे हैं, अब सरकार पुराने कानूनों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो उधार का कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ अमेरिका से ले लिया, कुछ ब्रिटेन से ले लिया, कुछ कनाडा से ले लिया, कुछ आयरलैंड से ले लिया, इस तरह की बात कही जाती है। एजुकेशन में जब हमने लिया तो इसमें शब्द आया आर्टिकल में, देखेंगे आप मैकालेवाद, तो इंग्लिश मीडियम हमने ले लिया, हमने अपनी लोक भाषाओं को तरजीह नहीं दी, यहां तक कि हिंदी को तरजीह नहीं दी जो स्वतंत्रता आंदोलन की हमारी भाषा थी। हेल्थ में हम देखते हैं तो हमने एलोपैथ को बहुत ज्यादा अपनाया, अब आयुष के तहत फिर अब आयुर्वेद, यूनान और होम्योपैथ की बात हो रही है, अदरवाइज हम उधर चले गए बिल्कुल। जब हम आर्थिक दृष्टि से देखते हैं तो हमने फिर मार्क्सवादी पद्धति अपनाई, यानी कि जो भी काम करना है वो गरीबों के लिए करना है, निजी क्षेत्र को खत्म करो, सब कुछ सरकार करेगी, प्राइवेट संपत्ति नहीं होनी चाहिए, हम इस नीति को लेकर के चले, उसका फिर नुकसान उठाना पड़ा, जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद फिर वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आ गए। अभी जो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जिसको देखिए इन्होंने नाम दिया है ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था जहां ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की बात आई थी और इसके बाद फिर ये जोर पकड़ते चले गए। अब हुआ ये फ्रेंड्स कि जब डेवलपिंग कंट्री, भारत जैसे देश डेवलपिंग कंट्री थे, हमारा शोषण हुआ था, शोषण होने के कारण हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और हमको पैसे की जरूरत थी ताकि हम अपना विकास कर सके। हमारे यहां कुछ भी तो नहीं था, न सड़कें थी, न इंस्टीट्यूशंस थे, न उद्योग थे, इनके लिए पैसे की जरूरत थी। तो केवल भारत के साथ ही नहीं हुआ है, ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज के साथ यही हुआ कि वो IMF और वर्ल्ड बैंक से लोन लेने लगे, उनकी जरूरत थी। और IMF और वर्ल्ड बैंक पर जो दबदबा है वो अमेरिका जैसे देशों का है, विकसित देशों का है, क्योंकि फंडिंग वे लोग करते हैं। तो वो अपने शर्तें थोपने लगे कि ठीक है हम आपको कर्जा दे रहे हैं लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। तो देखिए उस स्तर पर तो स्वाभाविक है, नेचुरल है। आप सोच के देखिए कि अगर कोई आदमी आपके पास कर्ज लेने आएगा तो आप इंश्योर करना चाहेंगे ना भाई कि आपका कर्ज वापस मिल जाए। तो मान लीजिए कि वो फालतू का खर्चा कर रहा होगा तो आप कहेंगे भैया देखो इस फालतू का खर्चा अपना बंद करो तभी तो तुम मेरा पैसा वापस कर सकोगे, या आप कमाई के साधन बताएंगे कि तुम ये काम कर लो। अब आप ये सब बता इसलिए रहे कि भैया मेरा पैसा वापस हो जाए, लेकिन उसको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन आप उस पर शर्तें थोप रहे हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके की शर्तें थोपी जाने लगी, खासकर 1951 के बाद की भी उन्होंने चर्चा की है। जैसे उन्होंने कहा सब्सिडी खत्म करो। अब आप देखिए कि लगातार दबाव पड़ रहा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कि भारत किसानों को जो सब्सिडी देता है उसे वो कम करता हुआ खत्म करे, और जिस दिन हमने ऐसा कर दिया हमारे तो किसान बिल्कुल, उनकी हालत खराब हो जाएगी, हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। इसी को हम कहते हैं दोहा सम्मेलन। लगातार उसका दबाव पड़ रहा है, लगातार ये प्रेशर है कि साहब आप निजीकरण कीजिए, सरकार को केवल लॉ एंड ऑर्डर देखना चाहिए, उसको शिक्षा से मतलब नहीं होना चाहिए, उसको हेल्थ से मतलब नहीं होना चाहिए, उसको दूसरी किसी चीज से मतलब, वो केवल लॉ एंड ऑर्डर देखे। ये दबाव क्यों पड़ रहा है? ये दबाव इसलिए पड़ रहा है कि जब आप उनको प्राइवेटाइज करेंगे तभी तो ये विदेशी कंपनियां आपके यहां आकर के यूनिवर्सिटी खोल सकेंगी, स्कूल खोल सकेंगी, अस्पताल खोल सकेंगी। और वो आप अभी देख ही रहे हैं, धीरे धीरे देख रहे हैं ना कि कैसे ये सब चीजें होती जा रही हैं जो कि हमारे हितों के विरुद्ध हैं, क्योंकि हमारे लोग अभी इतने सक्षम नहीं हैं, इतने पैसे वाले नहीं हुए हैं कि वो हेल्थ का खर्चा उठा सके, वो अच्छे एजुकेशन का खर्चा उठा सके। लेकिन सरकार हाथ खींचती जा रही है कि नहीं नहीं हम निजीकरण करेंगे। तो क्या भारत को यह सूट करता है? फिर वो लगातार दबाव डालते हैं कि आप अपना राजकोषीय घाटा कम कीजिए। राजकोषीय घाटा क्यों होता है फ्रेंड्स? राजकोषीय घाटा तो इसलिए होता है ना कि मान लीजिए कि सरकार 100 रुपए कमाती है तो उसमें से 105 रुपए खर्च कर देती है, और कहां खर्च करती है? समाज कल्याण में, कि शिक्षा में, स्वास्थ्य में। वो कहती नहीं आप 105 खर्च मत कीजिए, आप अपने घाटा को कम कीजिए, आप 100 रुपए में ही रहिए, जितना कमा रहे हैं उतना ही खर्च कीजिए। तो इसका अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव यह होगा कि सरकार जो सोशल वेलफेयर के लिए खर्च करती है वहां से अपने को विड्रॉ कर ले, फिर वहां प्राइवेट लोग घुसे। तो पूरी की पूरी जो ये वर्ल्ड बैंक और IMF की जो नीतियां हैं, जिसको आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की भी जो नीतियां आ गए उसी में शामिल कर लीजिए, इनकी जो पॉलिसी है ये है कि हम विकासशील देशों पर अब नया उपनिवेशवाद ला दें। नया उपनिवेश का पहला उपनिवेश तो क्या था कि ये सब खोजते खाजते बाजार आए और यहां शासन करने लगे, जो ब्रिटेन का हमारे ऊपर रहा वो पहला उपनिवेशवाद था। अब ये कि हम अर्थव्यवस्था के हिसाब से घुसे इनके यहां, मतलब इनकी जो नीतियां हैं उनकी नीतियों को अपने हित में हम लागू कराएं, और इसे हमारे यहां के लोग नहीं समझ पाते। तो उन्होंने यही कहा कि जो हमारे यहां अर्थशास्त्री आते हैं, जो सलाहकार लिए जाते हैं, तो पता लगा वो विदेश में जो काम कर रहे हैं वो लिए जा रहे हैं। कोई वर्ल्ड बैंक में काम कर रहा है, कोई IMF में काम कर रहा है, कोई और कर रहा है, तो उनका बायोडाटा तो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत प्रभावशाली होता है, लेकिन वो भारत की जरूरत को नहीं पहचानते, पहली बात। दूसरा ये है कि वो उनके हितों को तरजीह देते हैं। तो इसको उन्होंने अपने इस आर्टिकल में हाईलाइट किया है। तो दोस्तों मैंने थोड़ी सी एनालिसिस करने की कोशिश की है, और इस लिहाज से की है कि आप ये जान सकें कि किसी भी आर्टिकल को आपको स्ट्रेट तरीके से पढ़कर छोड़ नहीं देना है, अगर मैं कहता हूं कि यह आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है कि उसे आपको समझना है, उसके साथ वक्त लगाना है। चाहे फिर आप, मैंने अगर 5 आर्टिकल दिए हैं ना, तो आप एक ही आर्टिकल पढ़िए, लेकिन उसे बहुत अच्छे से पढ़िए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। अगर खुद नहीं समझ पा रहे हैं तो उस सब्जेक्ट के जानकार व्यक्ति से समझिए, तब जाकर के आपके सिविल सर्विस की रियल तैयारी होगी। अदरवाइज तो आप पढ़ेंगे छोड़ते रहेंगे, पढ़ेंगे छोड़ते रहेंगे, आपको आत्मसंतुष्टि होती रहेगी, इससे अधिक कुछ नहीं होगा और इससे बात बनेगी नहीं। तो मित्रों, आज के मुख्य विषय के बारे में इतना ही। जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, वो आप देख लीजिएगा। अब मैं आता हूं अंतिम चरण पर, जो स्वागत का चरण है। तो मित्रों, मैं स्वागत करता हूं अपने एक नौजवान साथी का, जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर की क्लास के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इन नौजवान साथी का नाम है अरुण कुमार, जो सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हैं। तो अरुण कुमार, अपनी पूरी एकेडमी की टीम के साथ मैं आपका हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त भी करता हूं। नमस्कार।